आपको ये भी बताती चलूं कि आज है इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड और इस अवसर पर हम एक बहुत ही मार्मिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो है भारत में छोटी बच्चियों के रेप का मामला या उनके साथ शारीरिक रूप से जब दुर्व्यवहार होता है उसके बारे में। और ऐसी बच्चियों की सहायता के लिए एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्रांतिवाला.com। ये लोग ऐसी बच्चियों की सहायता करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं उनके एक्टिविस्ट कार्यकर्ता आनंद गुप्ता के साथ। नमस्ते आनंद जी।
नमस्ते कुमार जी।
सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्रांतिवाला.com, उसका मकसद क्या है और क्या कुछ करते हैं आप लोग?
हमारा मकसद है कि जो इंडिया में जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है और जो कल्चरल आइडियोलॉजीज हैं जो एक मुद्दे से रिलेट करती हैं, विच इज ये सेक्सुअल असॉल्ट, उसको बदलना है। क्योंकि इंडिया में एक तो जो है जो लोगों का स्वभाव है वो बदलना है, और साथ साथ में जो हमारा सिस्टम है उसका तो बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो अभी भी हम चाहते हैं कि जैसे किसी को कानून टाइम पे नहीं मिलता है, तो हम चाहते हैं कि लोगों को जस्टिस जो है वो एक समय पे मिले। नॉट जस्ट कि जस्टिस मिले, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर मिलना चाहिए, 4 साल के अंदर नहीं।
जी, तो ये बताइए कि क्या भारत में सुनते पढ़ते तो हैं कि बहुत से ऐसे हादसे होते हैं, तो आपके पास कोई आंकड़े हैं कि लगभग नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसे कितने रेप केसेस या मोलेस्टेशन के केसेस होते हैं?
जी एग्जैक्टली, तो एज यू नो डेटा बहुत मुश्किल होता है इस केसेस में, 90% तो रिपोर्ट नहीं होते हैं। बट हम जानते हैं कि जो हमारे पास डेटा है जैसे 2012 से लेकर 2013 का, उसमें किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स का 50% इंक्रीज था। सिमिलरली रेप के केसेस में भी इट वॉज 50% इंक्रीज। अब सरकार का डेटा काफी पुराना है, हमारे अंदर के सोर्सेज से जो पब्लिश नहीं हुआ डेटा हमको मिला, तो जैसे जस्ट दिल्ली में ही पिछले साल 2000 से ज्यादा रेप्स हुए थे। तो हालांकि ये डेटा नाबालिग और बालिग का इतना डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, बट ज्यादातर तो सब विक्टिम्स यंग होते हैं एंड आजकल मोर एंड मोर बच्चे हो रहे हैं। बच्चों के ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है।
इसका आप क्या कारण कहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है?
देखिए, मैं इस एरिया में 2 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे भी बहुत डर लगता है ये सिस्टम को, ये जो सच्चाई है उसको बदलते देखते हुए। अभी जो एक केस जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें हमने लड़की का नाम दिया आतिया, उसका असली नाम ही, वो अपने माँ बाप के बगल में सो रही थी, बाहर खुले में सो रही थी और उसको उठा लिया गया, लोगों ने झपट लिया उसको।
उसकी उम्र क्या थी आनंद?
7 साल।
ओह जी।
वैसे ही हमने एक दो और केसेस भी सुने कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के बगल में सो रहे हैं और जो रेपिस्ट लोग थे वो आसपास रहते थे, उन्होंने बच्चों को उठा लिया, रेप कर लिया एंड या तो मार दिया या मरने के लिए छोड़ दिया। सबसे बड़ी एक्चुअली प्रॉब्लम ये है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये लोग मेंटली डिरेंज नहीं है। ये लोग जो बच्चों का रेप कर रहे हैं, जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया में पेडोफाइल्स होते हैं, ये लोग पेडोफाइल्स नहीं है, लेकिन ये लोग तो नॉर्मल लोग हैं जो कभी कहीं सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर्स करते हैं। तो ये लोग वापस जाके सोसाइटी में मिक्स करते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ एक मॉरल फाइबर या एक स्क्रू या नट सिर का वो ढीला हो रहा है, मॉरल फाइबर फट रहा है। लेकिन कोई ना कोई तो इसको जो है एक सोसाइटी के तौर पे उसको जस्टिफाई करता है कि ये ठीक है, चलो कर लेते हैं, मजा करते हैं और उसको फिर छोड़ देंगे कहीं मरने।
बहुत दुखद तो बात है।
मैं कल ही एक लड़की से बात कर रहा था जिसका अब्यूज 7 साल तक हुआ है, वो 5 साल की उम्र से लेकर 12 साल तक की उम्र तक उसका अब्यूज हुआ था घर में उसके, एंड वो कहती कि जैसे बॉलीवुड में हम देखें तो क्या स्टोरी सिखाते हैं कि हीरो पहले लड़की को छेड़ता है, फिर वो मना करती है, फिर वो गुस्सा होती है, वो फिर भी छेड़ते रहता है एंड एंड में जाके वो हीरो को बहुत प्यार करती। लेकिन ये जो है रियलिटी में जब ये होता है, तब इंडिया में तो बहुत से केसेस होते हैं कि लड़की ने लड़के को मना कर दिया, उसने एसिड फेंक दिया उससे, या लड़की ने लड़की को मना कर दिया, उसने उसको खून कर दिया। अभी हर हर हफ्ते एक केस तो आता ही है
जी।
तो यू नो ये जो एटीट्यूड है कि आप लड़की को छेड़ो और फिर वो इवेंचुअली जो है
आपके प्यार में पड़ जाएगी। खैर सभी फिल्में तो नहीं है, हाँ कुछ फिल्मों में ये जरूर देखा जाता है। आपने मेरे ख्याल में दिल्ली का जो मशहूर बस में गैंग रेप केस हुआ था, उस पीड़िता के परिवार की भी कुछ सहायता की है, उसके बारे में बताएंगे जरा?
जी, तो मैं एक्चुअली खुद इंडिया में खाली 3 साल से रह रहा हूँ, उसके पहले मैं अमेरिका में रहता था 25 साल। तो जब मैं वापस आया मैं सोचा कि चलो देश के लिए कुछ करते हैं, अगर हम नहीं करेंगे, हम जैसे लोग नहीं कुछ करेंगे तो कौन करेगा। 2 साल पहले हमने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया था, दुनिया का सबसे लंबा खट रेप के खिलाफ।
अच्छा।
तो वो अटेम्प्ट करने में हमको जो है निर्भया के माता पिता मिले। तो जब हम उनके पास गए, एक्चुअली मुझे दिन याद है क्योंकि क्रिसमस का दिन था 25 दिसंबर। तो जब उनके यहाँ गए मैं बोला अंकल आंटी आपके साथ तो बहुत लोग होंगे, आपके साथ तो 35,000 लोग थे प्रोटेस्ट में। बोले बेटे हमारे साथ तो कोई नहीं है, एक जन कभी कदा आ जाता है, बाकी सब लोग तो अपना चले गए। तो मैं एकदम मतलब शॉक में था कि ये कैसे हो सकता है कि ये लोग यहाँ रहते हैं दिल्ली में और इतना बड़ा केस था और इनके साथ कोई नहीं है। सब पॉलिटिशियंस आके चले गए, सब यूनाइटेड नेशंस से आके चले गए एंड सब प्रोटेस्टर्स भी आके चले गए। तो मैं उनके साथ जुड़ा एंड हमने कहा कि हमको जो है आपके साथ लोगों को जोड़ने हैं। फिर हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया एंड धीरे धीरे हम छोटे लेवल से स्टूडेंट मार्चेस ऑर्गेनाइज करने लगे।
ठीक।
एंड छोटे मार्चेस से लेके जब दिसंबर में जब एक इनका रेसिस था जुवेनाइल वो रिलीज होने वाला था, तब फिर हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे एंड हम लोग ने अनबिलीवेबल सक्सेस पाया।
अच्छा।
बस थोड़े ही दिनों के प्रोटेस्ट के बाद में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पास हो गया।
बहुत अच्छा है। आप हमें किसी और नवीनतम केस के बारे में बता सकते हैं ताकि जागरूकता बढ़े कि क्या कुछ हो रहा है?
जरूर सर, अभी रिसेंटली करीबन 6 हफ्ते पहले मैं अपना अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें एक बहुत ही खराब कहानी थी, गंदी कहानी थी कि एक 7 साल की लड़की का गैंग रेप हुआ था 4 लड़कों के साथ
दिल्ली में।
7 साल की लड़की दिल्ली में। तो मैं हफ्ते का एक दिन देता हूँ, मैंने कहा चलो आज जाके ढूंढते हैं, इस लड़की को ढूंढते हैं। मेरे घर से तकरीबन 2 घंटा दूर था, लेकिन नॉर्मली मैं इतने दूर नहीं जाता हूँ, बट ये केस भी ऐसा ही था, इतना गंदा था। ये जो है अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में
जी,
उसके एकदम पीछे पड़ता था ये एरिया। तो वहाँ हम जाके गाड़ी से उतर के लोगों को पूछने लगे, भैया ये यमुना खादर किधर है, जो एरिया लिखा था न्यूज़पेपर में। पूछते पूछते हम किसी फ्लाईओवर के नीचे, कभी कभी आपको झुग्गियां मिलती है वहां गए, वहां से कहीं और जंगल में चले गए। तो यमुना किनारे, अगर जो भी आपके ऑडियंस में से दिल्ली अगर आता है
जी,
तो यमुना किनारे पे एकदम बैरन लैंड पड़ा हुआ है, बंजर लैंड है, वहां कुछ नहीं होता है। वहां पे आपको एक दो घर दिखेंगे।
अच्छा।
तो उन घरों में ये लड़की रहती थी। तो हम चलते चलते गए, ये ऐसे एरिया में रहते हैं, इनका कोई स्ट्रीट एड्रेस नहीं है क्योंकि ये यमुना किनारे, यहाँ बिजली नहीं आती है और ये लोग ऐसे ही रह रहे हैं 20 साल से। तो लड़की तो अस्पताल में थी, लेकिन जाके फादर मिला उनका और उसने पूरी कहानी बताई और सब मतलब सब लोग बहुत ट्रॉमेटाइज थे। एक औरत तो कह रही थी उसको बुखार हो गया जब से उसने उस लड़की की हालत देखी,
जाहिर है।
और बाद में हम लड़की की माँ से बात करके हम हॉस्पिटल गए, एम्स हॉस्पिटल जो कि बहुत नामी हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहां पे हम गए और लड़की से मिले। लड़की भी एकदम मतलब चुपचाप उदास, एक कॉमन रूम में बैठी है जहाँ 4 और लोग एक तरफ है, 4 और लोग दूसरे तरफ। अब दिन भर बच्चा करे भी क्या, खाली वो ही चीज सोचेगा दिमाग में जो उसके साथ हुआ है। 7 साल का बच्चा। तो फिर हम अगले दिन जाके हम टॉयज लेके जाना चालू कर दिए, कलरिंग बुक्स लेके जाना चालू कर दिए एंड सोशल मीडिया पे मैं पोस्ट तो डालता था, लेकिन किसी कारण से ये पोस्ट लोगों से बहुत कनेक्ट किया, तो फिर मनी हम लोग फंड भी देना चालू कर दिए।
जी।
एंड मैं बस एक चीज पे फिनिश करना चाहूंगा, इस हादसे के 1 महीने बाद लड़की के फादर भी गुजर गए।
ओह, सदमे में ही बेचारे चले गए होंगे, बहुत दुखद घटना है, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको देखते हुए कारवां आपके साथ जुड़ता जाएगा اور ایسی بچیوں کا کوئی نہ کوئی بھلا کرے گا، ان کی دیکھ بھال کرے گا. آپ کے سمے کے لیے آنند جی بہت بہت شکریہ.
ضرور جی، تھینک یو جی.